Awakening with Brahma Kumaris.
Awakening with Brahma Kumaris ki nayi shrinkla Mind Matters mein aaj phir aap sabka swagat. Om Shanti. Hum baatein ye jaan pa rahe hain ki shayad हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम इतनी सारी स्ट्रेस में जी रहे थे, लेकिन अब रियलाइजेशन है और ये भी समझ में आ रहा है कि इस तरह से अगर जीते रहे तो बहुत ज्यादा बेहतर जिंदगी नहीं जी पाएंगे. कुछ तो करने की जरूरत है. क्या है वो बदलाव जो हमें अपने जीवन में लाने हैं ताकि हम अपने मन और तन दोनों के साथ एक सामंजस्य बिठा पाए. इसके लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी. आप दोनों का स्वागत. ओम शांति.
ओम शांति.
ओम शांति.
डॉक्टर शर्मा, बिल्कुल डेफिनेटली वी हैव अंडरस्टूड कि ये जो छोटी छोटी चीजें जो आपने बताई थी पिछली कड़ी में कि जिन्हें हम कभी सिम्टम्स मान ही नहीं पा रहे थे, दे वर पार्ट ऑफ आर लाइफ, दे कैन बी एक्चुअली द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. अब अगर रियलाइजेशन है कि हम स्ट्रेस में हो सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट? और अगर नहीं किया तो क्या हो सकता है?
बॉडी की और माइंड की बहुत ज्यादा पावर्स हैं अपने आप को नॉर्मलसी में लाने की, जिसको कि प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस कहते हैं. एक जब नॉर्मलसी है तो वो चीज बहुत आसानी से आपको बहुत दूर लेके जाएगी. गाड़ी में भी कहते हैं कि अगर आप टायर्स में पूरी हवा रखें, 50 से 60 किलोमीटर पे चलाएं, उसकी रेगुलर सर्विसिंग करते रहें, तो बहुत लंबे अरसे तक आप उस गाड़ी को चला पाएंगे. लेकिन अगर आप ऊपर नीचे हो रही है, एक्सल थोड़ा सा खराब हो रहा है, टायर्स में हवा है या नहीं, पेट्रोल कहां से भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो थोड़े दिन में ब्रेकडाउन होनी शुरू हो जाएगी. मन में और शरीर में भी यही प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन यहां पर उसकी पावर्स क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसे धीरे 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 बिना सोचे, जानबूझ के कोई नहीं करता, लेकिन बिना सोचे ही बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व देकर उसको पुश करते रहते हैं. वी कीप ऑन पुशिंग द लिमिट्स. द अर्लीएस्ट साइंस इट स्टार्ट शोइंग, और वो कई बार बच्चों में ही देखने में शुरू हो जाता है. कहते हैं कि बच्चे जो हैं उनको क्या तनाव के बारे में पता. बच्चे एक्चुअली बहुत जल्दी तनाव के बारे में सीख जाते हैं क्योंकि उनका माइंड ग्रोइंग माइंड है. वो बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प करता, अच्छी भी नॉट सो अच्छी भी. तो इसी वजह से अगर दूसरों में वो देखते हैं या घर वाले जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू में, या फिर स्कूल वाले वो उन पे प्रेशर डालते हैं, तो वो तनाव में आना सीख जाते हैं. और अगर वो प्रोसेस जीवन में इतनी जल्दी शुरू हुआ तो वो हर क्षण चल रहे हैं उसी के साथ. सो कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों में आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर जब वो एडोलेसेंट्स तक पहुंचते हैं तो उस समय में कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम
सीख जाते हैं. मतलब बड़ों को बिहेव करता हुआ देखते हैं तब सीखते हैं, या दे स्टार्ट क्रिएटिंग देयर ओन स्ट्रेसेस?
पहले तो बिहेवियर करते हुए देखते हैं, फिर जो उनपे प्रेशर्स दूसरे डालते हैं उसको अचीव करने के लिए करते हैं.
मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रेशर जहां क्रिएट हुआ नेचुरल है कि स्ट्रेस क्रिएट होगा? इज इट ट्रू?
मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल्सो चिल्ड्रेन इज कि वो बिहेवियर तो देखते हैं लेकिन वो आपकी वाइब्रेशंस को भी तो कंज्यूम करते हैं. इफ योर
इमोशन,
अगर आप टेंस्ड हैं या आप गुस्सा हैं या उदास हैं, और जब मैं आपके संपर्क में आऊं एंड इफ आई जस्ट मीट यू, वन इज आई सी योर बिहेवियर, बट द अदर इज आई ऑल्सो फील योर वाइब्रेशन, आई कैन कैच इट. जब हम मंदिर में जाते हैं वी फीलिंग द वाइब्रेशन ऑफ द प्लेस क्रिएटेड बाई सम अदर पीपल. हम तो अभी जस्ट घुसे हैं लेकिन उस स्थान के वाइब्रेशन कैसे बने उन लोगों से जो वहां गए और उन्होंने तपस्या की. तो हर एक के पास ये पावर है, या ये है कि हम दूसरों की वाइब्रेशंस को कैच करते हैं. अब बच्चे सबसे ज्यादा कैच करते हैं, तो बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स की वाइब्रेशन का असर इज राइट फ्रॉम व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम ऑफ द मदर. तो अभी उसकी सिचुएशनल है ही नहीं कोई स्ट्रेस, कोई सिचुएशन ही नहीं है, तो स्ट्रेस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता. अभी तो कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वाइब्रेशंस कैच कर रहा है ऑफ द एडल्ट कम्युनिटी जो उनके आसपास है. वो बिहेवियरल भी शायद थोड़ा धीरे धीरे सीखेगा, एक साल का होगा, दो साल का होगा, वॉच करेगा कैसे बात करते हैं, गुस्सा ऐसे होते हैं, उदास ऐसे होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन जो हम कैच कर रहे हैं, तो अगर पेरेंट ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता है तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा कैसा, कौन सी डाइट पर बड़ा हो रहा है, व्हाट्स द इमोशनल डाइट विच आई एम कंज्यूमिंग राइट फ्रॉम द वोम्ब एंड व्हाइल आई एम ग्रोइंग अप। एंड क्योंकि उस समय हमारी कैचिंग पावर हाई है तो हम बहुत जल्दी उसको कैच करते हैं, हम फील करेंगे। इसीलिए जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले के पेरेंट्स 20-30 इयर्स बैक इतने स्ट्रेस्ड नहीं थे। तो बच्चों को कब स्ट्रेस हुआ, धीरे धीरे जब एग्जाम आया, वो भी बड़ी क्लास में जाके, तब हम कहते थे बोर्ड का एग्जाम है ना इसलिए इसको टेंशन है, तो वो बोर्ड के एग्जाम के दिनों में टेंशन हुआ करती थी। और तब कहते भी थे चलो इट्स ओके ना, बोर्ड का एग्जाम है, खत्म हो जाएगा इस साल में टेंशन, सो इट वॉज लेकिन एज एक्सेप्टेबल। लेकिन अब कब है, राइट फ्रॉम जब बच्चा है, छोटा है, बिकॉज पेरेंट को है। तो अब वो सिचुएशनल स्ट्रेस भी नहीं है कि सिचुएशन है तब स्ट्रेस है, अब वो पेरेंट्स की एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई है। जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा कि हम ज्यादातर वो रहते हैं, मतलब हमारा व्यक्तित्व, जैसे पहले किसी का होता है कि व्यक्तित्व गुस्से वाला है, तो हम कहेंगे इसकी पर्सनालिटी है, सिचुएशनल नहीं है। वो कर करके उसकी पर्सनालिटी वैसे बन गई, आज स्ट्रेस भी हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। तो इट्स लाइक हमारा एनर्जी फील्ड, हमारा ऑरा कहे, इज लाइक अ परफ्यूम वी वेयर। तो जो परफ्यूम हमने यूज कर ली तो बच्चों को तो सबसे पहले उसकी वो खुशबू मिलने वाली है, सो दे कैच इट इवन विदाउट अ सिचुएशन। एंड क्योंकि वो बहुत छोटी एज में कैच करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब बचपन से ही उनकी वे ऑफ थिंकिंग कैसी बनती गई। अब फिर उनके लिए जब फर्स्ट डे स्कूल का इंटरव्यू देना है या फर्स्ट टाइम कोई, तो वो तो उनके लिए वो छोटी छोटी सिचुएशंस भी अब वो बोर्ड के एग्जाम जैसी हो गई। जो स्ट्रेस उस दिन होना चाहिए था वो उनको अब इस वाले में होने लग गया, क्योंकि उनकी भी तो व्यक्तित्व धीरे धीरे वैसी वाली हो गई थी। तो फिर अब सिचुएशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है फॉर मी टू गेट स्ट्रेस्ड, बिकॉज स्टेइंग इन एन इमोशनली लो स्टेट ऑफ माइंड हैज बिकम माय वे ऑफ लिविंग। पेरेंट्स इतनी एंग्जाइटी आज सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कितने बजे पिलाना है, कितने बजे खिलाना है, तो उसकी नर्चरिंग तो कर रहे हैं फिजिकली, लेकिन फिजिकल नर्चरिंग के साथ एंग्जाइटी की भी नर्चरिंग हो रही है, बच्चे की भी फिर टेम्परमेंटल एंग्जाइटी लेवल तो ऑटोमेटिकली
मतलब हम ये सारी चीजें उन्हें घुट्टी में दे रहे हैं जो पहले कहा जाता था।
आपने घुट्टी शब्द यूज किया और सिस्टर शिवानी ने वाइब्रेशन की जो बात की, फिजियोलॉजिकली मेडिकली वी नो कि जब भी स्ट्रेस होता है तो इंटरनली भी कुछ तो चीजें जो हम महसूस कर सकते हैं, सिम्टम्स जो बात हुई, लेकिन इंटरनली पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री बिगड़ जाती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स, जो कि हम टेंशन में हैं तो वो प्रोड्यूस होते हैं इंसिडेंटली, वो कुछ देर के लिए शरीर के लिए जरूरी होते हैं ताकि हम उस स्थिति से बाहर निकल के आ सकें, लेकिन अगर वो परमानेंट हो जाते हैं तो वो चाहे बॉडी में हो चाहे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि स्ट्रेस की वजह से निकलते हैं वो डैमेज देते हैं। जब बच्चा वूम में है तो वही हार्मोन्स अगर माँ को स्ट्रेस चल रहा है या माँ के आसपास स्ट्रेस चल रहा है, फैमिली में स्ट्रेस चल रहा है या झगड़ा चल रहा है या माँ कुछ ऐसी चीजों को कंज्यूम कर रही है, कई बार जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ देर के लिए वो सोचते हैं कि अच्छा अल्कोहल का सहारा ले लो, टोबैको का सहारा ले लो, स्मोकिंग का सहारा ले लो, कुछ तरह के खास मेडिसिन का सहारा ले लो, वो भी तो बॉडी में जा रही है ना। तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं हमने उस चीज से एक्सपोजर किया। फिर जब वो पैदा होता है तो ऑरा की जो बात आई, वी नाउ नो कि ऑरा जो है वो हमारी बॉडी का ही एक एक्सटेंशन है।
साइंटिफिकली ऑल्सो
यस इट कैन बी फोटोग्राफ्ड ऑल्सो नाउडेज, और उसमें करीबन 3 फुट हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हमारा शरीर जो दिखता है वहीं पे खत्म नहीं होता, उसके आसपास भी है, एंड डिपेंडिंग ऑन आवर मूड इट कीप्स चेंजिंग। कुछ मूड मीटर्स भी आते हैं जिसमें कि हमारा जो स्किन रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से आप अगर बिंदी उसकी लगाते हैं तो आपके मूड के हिसाब से वो बदल जाएंगे, ब्लू से वो रेड की तरफ हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारा ऑरा जो है वो भी चेंज होता है, क्योंकि हमारा ऑरा जो है वो हमारी बॉडी और माइंड की जो स्थिति है उसको दिखा रहा है। तो वो जो ऑरा में जो भी व्यक्ति आएगा उस ऑरा को तो महसूस करेगा, उसकी वाइब्रेशंस को वो पिकअप करेगा। सो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी हम उनको घुट्टी में एक तरह से, जैसा आपने कहा, वो दे रहे हैं। प्लस जो स्ट्रेस है वो भी स्कूल से भी नहीं शुरू होता, वो स्कूल में जाना कहाँ है उससे शुरू होता, कि फर्स्ट ईयर में अब उस बच्चे को ABCD भी पढ़ानी है, 1 to 10 भी पढ़ाना है, दो चार छोटी मोटी स्टोरीज भी सुनाने की होनी चाहिए, ताकि वो वहां पे जाके बहुत अच्छी तरह से लाइक अ पैरेट उसको बता सके। और वो बच्चा अगर परफॉर्म नहीं करता तो वापस आके बात होती है, देखो साथ वाले की उसने तो इतना अच्छा किया, तुम नहीं कर पा रहे हो। उसको पता ही नहीं है कि करना क्या, उसको इस चीज की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। देन ही स्टार्ट्स फीलिंग, ही और शी स्टार्ट्स फीलिंग गिल्टी, कह रहे मैंने पेरेंट्स की बात को नहीं पूरा किया, नाउ बिकॉज ऑफ मी दे आर अंडर सो मच स्ट्रेस। वहां से वो उसकी फिर प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है।
बच्चे कैसे कोप करते हैं इस स्ट्रेस को?
बच्चों में जिस तरह से स्ट्रेस आता है वो एडल्ट से डिफरेंट है। बच्चों को वो वोकैबुलरी ही नहीं है कि वो अपने स्ट्रेस को अच्छी तरह से बोल पाए। उनको अगर दिल की धड़कन बढ़ भी रही है, और अगर आप किसी बच्चे को, लोग चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर बच्चे को बहुत तेज डांटे और उस समय उसकी हार्ट बीट देखें तो बहुत तेज हो रही होती है, उस समय बच्चा सहम जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे, मम्मी ने कहा ये स्टोरी तुम्हें पढ़नी है, कल जाके वहां पे बस सुनाना है, उसको नहीं समझ आता क्यों करने की जरूरत है। लेकिन मम्मी इस वजह से टेंस है, उसे ये जरूर समझ में। सो दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेस, मे नॉट बी हिमसेल्फ और हरसेल्फ, लेकिन पेरेंट्स का, उसे समझ में आता है। फिर अब वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो जो गिल्ट होती है वो भी स्ट्रेस के रूप में आती है, कि मेरी वजह से उनको दिक्कतें हो रही हैं। एंड देन चिल्ड्रन में स्टार्ट हैविंग नाइटमेयर्स, दे में स्टार्ट हैविंग डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, उनकी भूख शायद थोड़ी देर के लिए कम हो जाए, या अगर उनके बिहेवियर की बात आती है और ये आता है कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारी वजह से हमें ये परेशानी हुई, वो हो सकता है थोड़ा सा विड्रॉ हो जाए, थोड़ा सा सहम जाए। जितना अच्छा वो दूसरों के साथ मिलता जुलता है या जो रोज की एक्टिविटीज हैं वो उतनी अच्छी ना करे। अच्छी एक बात बच्चों में होती है कि आमतौर पे उनकी मेमोरीज बड़े लोगों से शॉर्टर होती हैं, तो इन चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जिंदगी एक तरह से खेल है, तो वो थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है या बार बार उनको लगता है कि उनकी वजह से हो रहा है, तो उस उम्र के बच्चों में 5 साल से छोटे, बट 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, जहां पे कि वो स्कूल में जाते हैं, पीयर से मिलते हैं, वहां पे अगर प्रेशर्स होते हैं, और आजकल जो सिस्टम चेंज हुए हैं तो उसमें ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको पास ही होना है, लेकिन अच्छे नंबर लेके आना है, 5 तरह की एक्टिविटीज करना है।
नंबर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हर एक्टिविटी में यू हैव टू बी गुड।
कई बार पेरेंट्स अब ये भी सोचने लगे हैं कि चलो एक में नहीं तो दूसरे में अच्छा हो जाए, दूसरे में नहीं तो तीसरे में अच्छा हो जाए, तो उसके लिए कई पेरेंट्स गाड़ियां भी हायर कर लेते हैं, या एटलीस्ट मदर है जो कि गाड़ी इसीलिए सीखती है कि उसको अब स्विमिंग क्लास के बाद सॉन्ग के लिए जाना है, उसके बाद पेंटिंग के लिए जाना है, फिर शाम को ट्यूशन करनी है। ये बच्चा भी समझता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, या अगर नहीं हो रही है तो उसकी वजह से बाद में मुझे प्रॉब्लम होगी, या मेरी वजह से अब पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो वो जो पूरा माहौल है हर समय, चाहे उसे सो कॉल्ड फन एक्टिविटीज है, लेकिन अगर प्रेशर के साथ है, अगर गोल ओरिएंटेड है, तो फिर वो फन एक्टिविटी नहीं है। वो चीज बच्चे भी जरूर महसूस करते हैं।
और ये जो कई बार क्या होता है कि वो जिसे हम कई प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, जैसे ADHD की बात होती है, और ये बहुत नाम जो है आज के वक्त में पेरेंट्स के दिमाग में बैठ गया है, इज इट ऑल्सो अनदर यू नो रिजल्ट ऑफ टू मच ऑफ स्ट्रेस?
बचपन में हम अब ये देखते हैं कि बिफोर एडोलेसेंस, यानी 11 से 12 की उम्र से पहले के जो बच्चे हैं, उनमें से करीबन 8 से 10% को किसी ना किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इट डजंट मीन कि उनको दवाइयों की जरूरत है, इट डजंट मीन कि वो टोटली डिसफंक्शनल हैं, लेकिन एक जो उनका पोटेंशियल है, दूसरा जो उनको जिंदगी जीने में मजा आना चाहिए, तीसरा जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बचपन में होना चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप बना पाना या एडल्ट्स के साथ उनका एक संबंध होना, या फिर धीरे धीरे अच्छी तरह से ग्रो करके उस प्रोसेस से एक एडल्टहुड की तरफ जाना, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। ADHD एक ऐसी प्रॉब्लम है, उसी के साथ में कुछ और है जो बच्चों में देखी जाती है। एक है जिसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, जिसमें कि समझने की शक्ति तो है लेकिन कुछ चीजों को जिस तरह से हम चाहते हैं वो करने की शक्ति नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स, हो सकता है वो इंग्लिश अच्छी पढ़ ले, हिंदी अच्छी पढ़ ले, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाते, या हो सकता है एक लैंग्वेज वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए। इट इज लाइक सेइंग कि जी मुझे कोई फ्रेंच अगर बुक दे दें और कहें कि पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, लेकिन एक फ्रेंच बच्चा है जो बड़ी आसानी से कर पाएगा। तो उन बच्चों में कुछ तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, द वे दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन, उन चीजों को ना कर पाने की कारण उनके प्रेशर जरूर कई कई गुना बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। ADHD अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है, अटेंशन डेफिसिट जो है वो बड़ों में भी है, और उसका एक बड़ा कारण है मल्टीटास्किंग। अगर मैं टीवी भी देख रहा हूँ और साथ ही अब तो बच्चे एक साल की उम्र से गेम्स खेलना सीख जाते हैं,
आईफोन पे हैं
या लैपटॉप पे हैं या वैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, और साथ ही साथ वो कुछ और भी काम कर रहे हैं,
साथ साथ हेडफोन पे गाने भी सुन रहे हैं,
मदर ने कहा कि अच्छा पढ़ लो, तो वो सामने किताब भी खोल के बैठे हुए, तो उनकी एक्टिविटी में तीन या चार प्रोसेस इकट्ठे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक चीज पे उनकी अटेंशन पूरी नहीं होगी। ये एक बेसिक चीज है, लेकिन अगर बढ़ जाती है और हर सिचुएशन में होती है, मान लो वो बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा, वो बच्चा किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रहा और कार्टून भी नहीं देख पा रहा, क्योंकि हम बहुत से बच्चों को देखते हैं कि बाकी चीजों में उनकी अटेंशन बहुत कम है, लेकिन वो चीज जो कि उनको अच्छी लगती है उसमें उनकी अटेंशन पूरी है।
बिल्कुल, आप अलग भी नहीं झपकते उनको।
स्कूल में अटेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो अटेंशन है। घर में अटेंशन जब पेरेंट्स के साथ हैं तो नहीं है, टीचर आ गया तो है। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव अटेंशन डेफिसिट। तो इसमें ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो कि बहुत ज्यादा सीवियरली हाइपर एक्टिव है, और इंसिडेंटली देखा जाता है कि बॉयज में गर्ल्स के मुकाबले में डबल पाया जाता है। कुछ शायद सोशल कारण है कि लड़कों को कहा जाता है कि तुम गेम्स खेलो, तुम ये करो, और उनको ज्यादा इनकरेज किया जाता है ज्यादा चीजें करने के लिए। लड़कियों को कहा जाता है अभी भी परिवारों में कि अच्छा तुम थोड़ा सा आराम से जिंदगी चलो, थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी घर की चीजें देख लो, तो उनको समय मिल पाता है अपनी अटेंशन को प्रॉपरली फोकस करने का। इट ऑल्सो हैज प्रोबेबली टू डू समथिंग विद फूड, कि कुछ ऐसे शायद स्पेशली आर्टिफिशियल एजेंट्स जो हैं, या जो हम कई तरह के प्रॉब्लमेटिक जो कि केमिकल्स डलते हैं फूड प्रोसेसिंग में या फूड को ग्रो करने में, तो उन सब का असर होता है। तो ADHD में ना तो वो पूरी तरह से अटेंशन कर पाते हैं, ना ही एक जगह पे बैठ पाते हैं, तो वो जो हाइपर एक्टिविटी है और अटेंशन नहीं है, उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो जितनी पढ़ाई करनी चाहिए, जितनी सोशलाइजेशन करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते।
हमारे ही लाइफस्टाइल के कारण हमारे बच्चों की जिंदगियों में प्रॉब्लम है, और वो आज काफी पेरेंट्स समझ पा रहे हैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी विडंबना है कि हम सब कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस लाइफस्टाइल को हम चेंज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें यही नहीं समझ में आ पा रहा कि हमारे किस वजह से वो बच्चों के कौन से ऐसे लाइफस्टाइल का हमारा एस्पेक्ट है जो हमारे बच्चों के प्रॉब्लम जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि हम जब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ओके वी से वी विल स्लो डाउन, लेकिन उसमें कई बार हमें लगता है ये फियर आ जाता है तो हमारा बच्चे को हम कई सारी चीजों से वंचित करेंगे। बाकी सारे लोग जो पीयर्स हैं वो सब कुछ तो वहां डाल रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए इतना सब कुछ, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर वो और ही कहीं स्लो ना हो जाए. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पैराडॉक्स यू नो, एंड पेरेंट्स आर क्वाइट कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू.
आई थिंक जैसे हम अपने लिए अब सीख रहे हैं कि वी नीड टू स्लो डाउन, आई थिंक उससे पहले हमें बच्चों के लिए भी थोड़ा सा स्लो डाउन उनको होने देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अभी वो संस्कार है नहीं, हम क्रिएट कर रहे हैं. जैसे कहा कि इधर भी जाना है, फिर इस क्लास में भी जाना है, फिर इसमें भी जाना है, उसमें भी जाना है. लेट्स लुक एट आवर ओन चाइल्डहुड. हम तो गए नहीं, इतनी सारी क्लासेस में गए नहीं, लेकिन आज हम सब ने भी बहुत कुछ अचीव किया है, ये भी करेंगे और शायद हमारे से भी कई गुणा ज्यादा करेंगे.
हम ये तो सोचते नहीं ना कि हमने जो अचीव किया वो कुछ है. We are wanting the world for our child, actually.
No, yes, we want the world for our child. But for the child to be able to achieve that world, what you have created for him, the child has to be strong. अगर आज आप उसकी सेहत का, let's look at it physically, तो हमें समझ में आ जाएगा. आज अगर वो physically strong नहीं है, तो will he be able to achieve the world? नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ी कमी रह जाएगी, क्योंकि वो physically strong नहीं है. तो आप फिर एक physically कमजोर व्यक्ति पर आप ये थोड़ी कहेंगे he'll be able to achieve the world. You'll say, नहीं, ये थोड़ा सा कमजोर है तो ये इतना कर पाएगा. तो अगर हम physical health का उतना ध्यान रखते हैं, तो emotional health, and we are not talking of anybody who has any of these issues, we are saying normal har bachcha needs to be emotionally strong. Agar aap uski capacity se zyada usse karwa rahe hain, even if it is hobby, it's not studies, lekin ye class fir 3 se 4 yahan, fir 4 se 5 wahan, fir pressure, fir tum wahan time pe pahunche nahi, fir tumne ye nahi kiya,
performance anxiety,
fir performance, फिर हर क्लास में कंपटीशन, फिर हर एक के साथ कंपैरिजन. तो आपने सीख तो चार पांच चीजें ली, हम भी, मुझे स्विमिंग भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, लेकिन उस सब करते करते इमोशनली आई हैव बिकम अ लिटिल वीकर, आई द चाइल्ड हैज बिकम. क्यों ना, मेरे पास पूरी जीवन है, स्विमिंग इसके बाद सीखेंगे, इसके बाद ये सीखेंगे, उसके बाद वो सीखेंगे. हम सब कुछ उनको अभी से क्यों कराना चाहते हैं? The other day I met a lady, the child is 1.5 year old. Already उनका तो एक बच्चों का जिम होता है आजकल, वो तो 8 महीने की एज से जाते हैं. It's called my gym. And I was like, really, there's a gym? She said, yes, and my child enjoys it. I said, चलो ठीक है, वो जिम उनका बच्चों का बहुत बहुत ही फैंसी चीज है, एंड यू नो ठीक है, बट माय चाइल्ड लाइक्स गोइंग टू द जिम, ताकि उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन, बॉडी, माइंड, वो सब. एंड देन दे लाइक इट, क्योंकि वो बच्चा और बच्चों से फिर थोड़ा सा ज्यादा कर पाता है, अचीव कर पाता है, स्मार्टर लगता है, तो वो फिर और एक स्टिमुलेंट बन जाता है
और आई थिंक साइकी में चला जाता है कि जिम जाना जरूरी
है. तो विच इज ऑल्सो ओके. लेकिन अब नाउ शी इज ऑलरेडी प्लानिंग कि मुझे प्ले स्कूल में तो खैर 1.5 साल की एज में भेज दिया, वो भी ठीक है, फिर उसके बाद मुझे इसको पब्लिक स्पीकिंग क्लासेज में भी भेजना है, मुझे इसको डांस भी करवाना है, मुझे इसको ये. आई सेड, वो 1.5 साल का है, उसको तो अभी से तुम्हारी सारी फीलिंग कैच हो रही होगी कि उसको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. शी सेड, नो बट ही इज वेरी गुड, सो आई नीड टू डेवलप हिज. नाउ द चाइल्ड विल लर्न एवरीथिंग, लेकिन हाउ मच टोल इट विल टेक ऑन द माइंड अगर आप एक छोटे बच्चे से इस एज में ये. सो वी नीड टू क्रिएट दैट बैलेंस और अपने जीवन को देखें. हमारे पेरेंट्स ने हमें सब कुछ आराम से करने दिया था, हम भी अपने बच्चों को आराम से करने थे करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में भी सिचुएशनल जो चैलेंजेस है वो बढ़ते जाएंगे, वो घट नहीं सकते. सिचुएशनल चैलेंजेस बढ़ेंगे तो कोपिंग मैकेनिज्म पहले से ज्यादा स्ट्रांग चाहिए होगा. नेक्स्ट 20 ईयर्स, जो बच्चा आज 1 साल का है, नेक्स्ट 20 ईयर्स में अगर हम आज के बच्चों को कह रहे हैं एग्जाम स्ट्रेस एंड वट एवर प्रोफेशनल, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में वो ज्यादा होने वाला है. तो 20 ईयर्स बाद जो बच्चा होगा उसको आज के 20 साल के बच्चे से ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होगी टू कोप. लेकिन इफ वी गो एट दिस रेट, तो हमारे यही तो गैप बढ़ रहा है ना. सिचुएशनल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ टू बी एबल टू फेस दैट चैलेंज वो घटती जा रही है. सो द गैप इज बिकमिंग वाइडर. 20 ईयर्स पहले सिचुएशनल चैलेंज कम, इमोशनल स्ट्रेंथ ज्यादा. फिर ये वाली जेनरेशन में आए, सिचुएशनल चैलेंज हमने कहा बढ़ गए, स्ट्रेंथ कम हो गई. लेकिन प्रिपेयर फॉर 20 ईयर्स डाउन द लाइन, उसमें चैलेंज आज कहते ट्रैफिक इतना है, तो 20 ईयर्स बाद क्या होगा? घटेगा नहीं. कंपटीशन घटेगा नहीं, कुछ भी नहीं घटने वाला है, तो चैलेंजेज बढ़ेंगे। तो आई थिंक हर पेरेंट को आज से अपने वो एक साल के बच्चे के साथ आज से स्टार्ट करना है कि आई नीड टू मेक माई चाइल्ड इमोशनली स्ट्रांग, नॉट बेस्ट स्विमर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट पब्लिक स्पीकर, बेस्ट यू नो स्पोर्ट्स पर्सन, नो, आई नीड टू मेक माई चाइल्ड इमोशनली स्ट्रांग।
देन दे विल सेंड देम टू मेडिटेशनल क्लासेस।
इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मेडिटेशन क्लासेस के लिए जाना है, उसके
हैपनिंग दैट दे आर सेंडिंग देम टू दोस आश्रम्स एंड वो व्हिच द चाइल्ड इज नॉट एबल टू टेक।
यू नो इसमें एक सबसे बड़ी जो बच्चे के लिए प्रॉब्लम आती है वो है सेल्फ एस्टीम। व्हाट दे मे लर्न इज कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई विल ओनली बी गुड इनफ इफ आई डू दिस, इफ आई हैव नॉट डन इट वेल देन दैट मीन्स आई एम नॉट गुड इनफ। नाउ दैट डूइंग वेल, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अब जो बच्चा एक बहुत छोटे से शहर में है, ही मे बी ब्रिलियंट, वो उस शहर में सबसे टॉप करेगा। अब वो 12वीं के बाद अगर बड़े कॉलेज में, एक बड़ी सिटी में जाएगा, वहां भी क्या जो सब जगह से आए हैं उनके साथ उतना ही अच्छा होगा? फिर उसके बाद अगर वो IIT में जाएगा तो वहां पे तो क्रीम वाले आए हैं। तो हर बच्चे की अगर फीलिंग ऑफ एडिक्वेसी, फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई, जो कि आमतौर पे पेरेंट्स एंड जो अदर्स हैं अराउंड, एक बहुत शायद चेंज जो आया है कि जो अदर्स अराउंड हैं, जो कि कई बार ग्रैंड पेरेंट्स होते थे या दूसरे रिलेटिव्स होते थे, वो इस प्रोसेस को थोड़ा सा बैलेंस कर पाते थे। अभी एक और चेंज आया है कि कुछ चीजें जो हमको एज अ पेरेंट नहीं मिली और अब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को इतनी जल्दी इतना ज्यादा दे दें कि हमारी अपनी कमियां पूरी हो जाए, पर वो कहीं ना कहीं बच्चे की नहीं, वो हम उनकी जिंदगी अपने थ्रू जी रहे हैं। तो उससे बच्चा हमेशा आपके ऊपर डिपेंडेंट है टू फील गुड, एंड दैट इज नॉट समथिंग गुड फॉर
दिस सर्विस। यू नो एक्चुअली दीज आर द रियल
फेयर आल्सो, इट्स नॉट फेयर टू द चाइल्ड कि आप अपनी डिजायर्स, अपनी एम्बिशंस को एक बच्चे के थ्रू फुलफिल करवाना चाहते हैं। हाउ इज इट फेयर टू द
वक्त वो है कि अपनी डिजायर्स आज भी किसी भी उम्र में है, आप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हैं। डॉक्टर शर्मा, थैंक यू सो मच। सिस्टर शिवानी, ओम शांति।
चिल्ड्रन स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रेस एट अ वेरी अर्ली एज बिकॉज ऑफ 3 रीजंस: कैचिंग वाइब्रेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर इन द वूम्ब, कॉपीइंग बिहेवियरल पैटर्न्स एज दे ग्रो अप, एंड trying to achieve the pressures put on them by their parents and teachers. Each of us carries an energy field of electromagnetic waves of about 3 feet around us, called aura, which depends on our state of mind. Everyone who comes in contact with this energy field will get influenced by it. Kids do not perceive stress because of situations, but can perceive that their parents are stressed and also create guilt if they feel that they are the cause of their parents' stress. Help children to develop their self-esteem based on their qualities and not on their ability to perform. Constant pressure to perform and comparison with others depletes the emotional strength of the child.
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 6 6 0. Om Shanti.